फरमाइए।
सलाम अलैकुम, सियावश हैं?
जी हाँ सियावश, कहाँ हो मेहरान को तुमसे काम है।
जी आ रहा हूँ आ रहा हूँ, कह दीजिए आ रहा हूँ।
नामाकुल, तुम फोन क्यों नहीं उठाते? कैसे देता हूँ, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा।
मतलब ये मुसीबत में पड़ गया हूँ, सब मेरा पीछा कर रहे हैं, हर बात का सवाल जवाब करते हैं।
तुम जब इतने मुन्ने थे तो किस लिए हमारे इस मामले में आ गया है? उस वक्त जब कह रहे थे कि मेहंदी की जगह दस्तखत करो, नहीं सोचा? तुमसे कह रहा हूँ।
क्या करूँ, अगर कहूँ कि गलती की तो क्या तुम मान लोगे, मेरी जान छोड़ दोगे?
गलती की, बस इतना ही?
ओहो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई?
सिंहवश, अगर तुम लोग ये समझते हो कि खुद साइड पर हो जाओगे और सब कुछ मेरे गले डाल दोगे, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। मैं अगर अदालत में घसीटा गया तो कह दूंगा कि मेमारियान को तुमने ढूंढा, सईद तुम्हारे साथ मिला हुआ है और मेमारियान ने तुमसे कहा था सब कुछ।
देखो, तुम जो करना चाहते हो करो, तुम्हारे ख्याल में जज वहाँ इसलिए बैठे कि तुम्हारी बात ना सुनते रहे?
गधों की तरह कहाँ जा रहे हो? सियावश, आओ सईद के पास चलते हैं, उसे कह दो कि मेमारियान का एड्रेस दे दे।
बदतमीजी मत करो।
बदमाश हूँ तो तुम क्या कर सकोगे?
अंदर आओ।
ये लो, यही चाहते थे।
देखो, अगर तुम समझते हो कि खुद को निकाल के सारा कुछ मेरे जिम्मे डालोगे, ये तुम्हारा वहम है।
पता है क्या है, अब अगर ऐसी बात है तो तुमको जो करना चाहते हो करो, जाओ। किसे कहा दस्तखत करने के लिए, हर चीज पे दस्तखत कर देते हो तुम। अगर पागल हो तो अलग बात है, हर जगह पे दस्तखत करने लगते हो तुम भी।
देखो, हमसे तुम क्या चाहते हो, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो तुम आखिर?
अम्मी, आप दखल ना दें।
जब तक हमें मार नहीं दोगे चैन से नहीं बैठोगे। दखल मत दो, दखल मत दो। आ जाओ अंदर, जल्दी अंदर आओ।
तुझे तो मैं देख लूंगा।
ठीक है, देख लेंगे, क्या कर लोगे?
अंदर आओ तुम। देखो, इसके बाद यहाँ नजर आए ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। बदतमीज गुस्ताख लड़के।
जी,
अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेहरान? तुम कहाँ? तुम
यहीं गाड़ी में?
थाने गए थे?
नहीं जाऊंगा।
जल्दी करो, तुम्हें सुबह जाना चाहिए था।
पहले जरा घर जाना है, उसके बाद जाऊंगा।
अभी फौरन जाओ। तुम ठीक हो?
हाँ ठीक हूँ।
वहाँ जाकर अगर कोई नई बात पेश आए तो मुझे इत्तला दो।
फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं पेश आएगा।
मेरा जरूर जाना, वरना हमारे लिए मसला पेश आएगा।
ठीक है, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
एक साल
मिलाकर जो काम शुरू किया है उसको मुकम्मल तो करना होगा ना।
क्या मतलब कि तेरान में नहीं रहोगे?
देखो, ज्यादातर काम बंदर अब्बास, किश्म और चाबहार में है, क्योंकि हमारे पास वहाँ कोई जगह रहने की तो है नहीं, ऑफिस बना सकें, इसलिए बेहतर है कि मैं वहाँ रहूँ, क्योंकि बार बार आने जाने में खर्चा बहुत होगा। पिछले चंद दिनों में तुमसे जो रابطہ नहीं किया, इसी काम में मसरूफ था। नाज़रीन, एक साल बाद जब वापस आऊँगा तो तुम्हारे वालिद से बैठकर बात करूँ, सब कुछ बताऊँगा, ये कि क्यों पढ़ाई छोड़ी और ये काम क्यों शुरू किया, सारा सब कुछ बता दूँगा। ठीक है, तुम जानती हो मैं बात क्या है। बात यह है कि मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं रहूँगा भी तो तुम्हारे वालिद कह चुके हैं कि हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। यहाँ रह के तो मैं ना इधर का रहूँगा ना उधर का, ज़रा काम भी आगे बढ़ेगा और जल्द अज जल्द वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी।
मतलब एक दिन भी छुट्टी लेके नहीं आओगे?
नहीं।
अच्छा, मुझे तो छोड़ो, क्या अपनी माँ लोग को भी याद नहीं करोगे?
असल में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, अगर मेरे अपने हाथ में होता तो न जाता, लेकिन कोई चारा नहीं, मुझे जाना होगा। नाजनीन, जाना होगा ताकि उन चीज़ों को फराहम कर सकूं जिनका तुम्हारे अब्बू से वादा किया था, है ना? तुम्हारे ख्याल में तुमसे न मिलना मेरे लिए आसान होगा?
जानते हो मेहरान, मेरे लिए ना घर, ना गाड़ी, ना पैसा, मतलब कुछ भी अहम नहीं है। नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों अब्बू ज़िंदगी के इब्तिदा ही से इन चीज़ों के पीछे पड़ गए। तुम्हारी और अब्बू की सोच अलग है, मुझे मजबूरन तुम लोगों की सोच पर चलना पड़ रहा है।
नाज़रीन यकीन करो, मैं हरगिज़ ऐसा होना नहीं चाहता था। यानी अगर मेरे अपने हाथ में होता तो हरगिज़ ना चाहता। मुझे ज़िंदगी में तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है।
अरे ऐसा भी क्या, 6 महीना तुम जाओ, 6 महीना से अवश्य है।
नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, क्योंकि इस काम में मेरा हिस्सा ज़्यादा था। ये काम ज़्यादातर मेरे कहने पर चलाया गया है, इसलिए देखो जब मैं वापस आऊँगा तो सब कुछ तुम्हें बताऊँगा, सब कुछ मसाइल हल हो जाएंगे तब बताऊँगा, सब कुछ बता दूँगा, मुझ पर भरोसा करो।
भाई भीख मत जाना, हट जाओ यहाँ से।
मुझसे नाराज हो? नाज़िम यकीन मानो मेरे अपने हाथ में नहीं, मुझे जाना होगा। मेरा दिल तुम्हारे पास है लेकिन मजबूर हूँ।
तब जाना है।
नहीं जानता, नहीं मालूम।
तो इन चंद दिनों में बंदर अब्बास क्यों गए थे?
कोई जगह किराए पर लेने गया लेकिन कोई जगह नहीं मिली। कहाँ है कि हमारे लिए एक दफ्तर का इंतजाम करेंगे और इंतजाम होने के बाद हमें बुलाया जाएगा।
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
پتہ نہیں جو بھی کرتی ہوں ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی
ٹھیک ہو جائیں گے وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے
ہائے اس بیتا کے ہاتھوں مجتبہ सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन बीता में तब्दीली नहीं आएगी।
बीता भी बदल जाएगी।
पर आज अम्मी ने कहा है कि जाना चाहती हैं।
क्यों?
नहीं मालूम, हर इंसान अपने घर में ज्यादा इजी रहता है।
ये क्या कर रही हो बाहर? ये जगह भी उनके अपने घर की तरह है। मैं रात को अब्बू से बात करता हूँ। इस वक्त कहाँ है?
अमीर हुसैन को पार्क लेके गए हैं।
इस वक्त?
हाँ, अब्बू कह रहे थे कि रातों को रश नहीं होता। नहीं मालूम, शायद अम्मी से बात करना चाहते थे।
करना चाहती हो?
बीता और बर्तन धोते ये जगह बहुत गंदी हो गई है।
यार छोड़ो छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, हाथ ना लगाओ शबनम।
तुम्हारे अम्मी अब्बू लोग आ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे।
मेरी जान, जब अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं तो नतीजा यही होता है ना, मैं उनकी नौकरानी तो नहीं।
अच्छा कम से कम अपनी गंदगी तो समेटो।
ना नहीं चाहिए यार शबनम, छोड़ो ना, हाथ ना लगाओ, बस छोड़ो।
कसम से बुरी बात है यार, बुरी बात है।
यही जो मैंने कहा, हाथ नहीं लगाओ। इतने गपशप लगाते हैं, बर्तन धोने की कोई जरूरत नहीं, चलो आओ यार, चलो।
जरा देखो तुम्हारे आंख के ऊपर क्या हुआ है।
क्या हुआ है?
एक तरफ से गिरी हुई है, कल रात से मजीद खराब हो गई है।
अपनी तरफ से बातें मत बनाओ, कहां से गिरी हुई है?
सच कह रही हूँ कसम से।
अभी जा यार, फजूल बातें ना करो।
कसम से सच कह रही हूँ
शबनम साहिबा, कसमें ना खाओ।
ये लो आईना खुद देख लो, देखो मैं झूठ नहीं बोल रही।
देखो कहां से गिरी हुई है, बहुत बेहतर है।
आज ज्यादा खराब हो गई है।
गलत समझी हो, बहुत बेहतर हो गई है, कल मजीद बेहतर हो जाएगी।
बहरहाल मैंने बता दिया, बदतर हो गई है
लेकिन मेरे ख्याल में तो बहुत प्यारी है, पहले से तो बहुत बेहतर है। जी जी आ जाइए अंदर, पिज्जा आ गया।
कब तक ऐसे जिंदगी गुजारोगी?
कैसे?
फोन करके माफी मांग लो ताकि वो लोग वापस आ जाएं।
उनकी अपनी मर्जी, आना है तो आ जाए, नहीं तो ना सही। मैंने थोड़ा कहा था कि जाए।
भी तो खुदा के लिए।
क्या मतलब शबनम? कल तक तो मुश्तबा साहब बुरे दामाद थे, अब वो अच्छे हो गए और मैं बुरी हो गई हूँ। वो जहाँ खुश रहते वही रहे। मैं अब उनके खेलों से धोखा नहीं खाऊंगी शबनम। इसके बाद अगर मैं पीछे हटूंगी तो कल हर बात पर घर छोड़ के चला जाया करेंगे।
कल यूनिवर्सिटी आओगी?
हाँ, क्यों ना आऊं? देखो खुद ही फोन किया है। शबनम तुम्हारे घर वाले हैं, छोड़ो उठाने की जरूरत नहीं।
अरे क्यों नहीं जरूरत है, वरना सोचेंगे कि मैंने झूठ बोला है। हेलो, सलाम, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्यों नहीं? उनके अम्मी लोग नहीं हैं। ठीक है, कल मैं यूनिवर्सिटी के बाद घर आ जाऊंगी। ठीक है, कहा ना ठीक है। जी अम्मी जान, आ जाऊंगी, आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। तुम्हारे अम्मी लोग आएंगे तो मत कहना कि मैं यहाँ थी।
हैं, क्यों?
मुझे शर्म आती है कि वो इस जगह को इस हालत में देखें। अरे कहाँ रह गई, जल्दी आओ।
चलो यार चलो।
अंदर जाओ बेटा, घर में कोई नहीं है?
पता नहीं, ऊपर जाओ।
अम्मी जान क्यों आए? चंद दिन और हमारे घर रह लेते, इस तरह तो मुझे सख्त परेशानी होगी कि आप यहाँ अकेली हैं।
आखिरकार तो आना ही था ना बेटा, हर किसी को आखिर अपने घर ही जाना होता है।
अगर आप चंद दिन यहाँ रहते तो वो अपने आप को तन्हा पाती और अपना रवैया बदल लेती।
नहीं हो सकता बेटा, हम लोग सारी उम्र काम करने के बाद अब दामाद के घर में रहना मुनासिब नहीं है। तुम्हारे शौहर को भी आराम से रहना होगा ना, सुकून से।
क्या मुश्तबा नाराज हो गया है? उसने कुछ कहा है क्या?
मैंने कब कहा कि नाराज हो गया है?
देखें वो मेरा भी घर है ना अम्मी।
मुझे मालूम है बेटा, लेकिन बहरहाल हर चीज का अपना हिसाब किताब होता है। मुश्तबा भी थका हुआ काम से आता है, हॉल में लेटना चाहता है, पैर फैला के लेटना चाहता है, लेकिन मैं वहाँ पे बैठी हूँ, नहीं लेट सकता। देखती हो ना कितना शर्मीला है वो।
खाला पिता कहाँ है?
अमीर हुसैन उनको हाथ नहीं लगाओ, गंदे हैं। उठो उठो आओ नीचे, तुम्हारे लिए कार्टून लगाती हूँ। शाबाश।
खाला मेरे लिए जेली लाई है ना?
चल हट जाओ बच्चे।
यहाँ की ये हालत क्यों बना रखी है? तुम्हें शर्म नहीं आती?
क्या ये तुम्हारा घर है? जी नहीं चाहते तो बाहर जाओ।
पीछा।
ये लगा था कि याद रहे बड़ों से किस तरह बात की जाती है।
अम्मी खुदा के लिए,
मुझे मारती है, मुझे मारती है।
अम्मी छोड़िए उनको, खुदा के लिए छोड़िए।
हटो सामने से, हटो
प्लीज अम्मी,
हटो सामने से। फौरन जाओ, जो गंद मचाई उसे साफ करो।
मैं इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ।
जो करना चाहती हो करो, लेकिन पहले रुको, तुम्हारे बाप आए फिर। हाय बेटा, बाहर क्या हो गया तुम्हें?
कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ, जरा सा चकरा गया। ठीक हूँ अम्मी, कुछ नहीं हुआ है।
उठो उठो उठो, कोई बात नहीं, आओ।
ठीक हूँ अम्मी जान, ठीक हूँ,
आओ बैठो, आओ।
कुछ नहीं हुआ है,
आओ बैठो, देखिए क्या हुआ है। बैठो बैठो यहाँ पर, बैठो, आओ यहाँ पर लेट जाओ, आराम से लेट जाओ, आराम से आराम से। उठ के आओ, हॉल साफ करो, वरना इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारे टीचर्स के सामने आके तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। समझ में आया? और हाँ, खबरदार जो इसके बाद बाहर से इस लहजे में बात किया। अमीर हुसैन बेटा, जाओ कमरे में से फोन लेकर आओ।
अम्मी जान, कहीं मुश्तबा को फोन नहीं करना?
नहीं, शबनम को फोन करना चाहती हूँ। उसे शर्म नहीं आती यहाँ पे आके खाती पीती और गंदगी करके चली जाती है?
आपको कहाँ से मालूम कि शबनम यहाँ थी?
हमसा ने बताया, मैंने खुद ही उनसे कहा था कि रोज देखे यहाँ पर घर पर कौन आता है और कौन जाता है। मैंने फोन करके पूछा। ये क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया?
कुछ भी नहीं, ठीक हूँ, ठीक हूँ अम्मी जान।
हाँ मिला हो क्या?
फिलहाल अब्बू को पता ना चले।
खुदा का शुक्र है, मैं तो घबरा ही गई थी। मुश्तबा जानता है?
जी जानता है।
खाला इधर आए खेले।
अमीर हुसैन बेटा, कहाँ हो? फोन की जरूरत नहीं है, आ जाओ बेटा।
क्यों जरूरत नहीं है? फोन करके तुम्हारे अब्बू को कहना चाहते हो कि आखिर आके इस मसले को हल तो करें।
छोड़िए अम्मी जान।
क्या करूँ इसका, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या करूँ उसके साथ।
अस्सलाम वालेकुम बीता।
अस्सलाम वालेकुम, इतनी देर क्यों है? तुमने तो कहा था जल्दी आओगी।
क्लास खत्म होते ही आ गई ना, बाहर साथ में नहीं आई है?
आई हुई है, हॉल में बैठी है। आ चलो साथ में चाय पीते हैं।
जी अभी आती हूँ।
नहीं चाहिए।
हाँ चलो फिर से साथ में खेलते हैं।
पकड़म पकड़ाई खेले।
क्या हुआ बेटा?
कुछ नहीं।
उफो, चलो हम चलते हैं टीवी देखते। पिश, अरे बैठो बैठो
बैठो।
ये कहाँ जा रही है?
कहीं नहीं, मैंने उसे भी बता दिया कि उसके वालिद के आने से पहले एक कदम बाहर नहीं रख सकती।
नाजानीन तुम उससे बात करो ताकि अपनी हरकतों से बाज आए।
अच्छा तो हुआ क्या है?
छोड़ो, कहाँ जा सकती है? नहीं डरो बेटा, तुमने तो देखा घर का क्या हाल किया था उसने। ऐसी हरकतों को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना तुम्हारी खाला, ना तुम्हारे मामू, ना तुम्हारे चचा। जहाँ भी जाएगी या इसको इंसानों की तरह रहना पड़ेगा या दो दिन के अंदर इसको घर से बाहर फेंक देंगे। मुझे आजमाना चाहती है, चार घंटों से सामान समेट रही है, मुझे तो पता है कहीं नहीं है उसके पास जाने के लिए।
कमरे का दरवाजा बंद किया है।
छोड़ो, ज्यादा लिफ्ट न दो।
हेलो शबनम।
हेलो।
सलाम।
सलाम।
ठीक हो?
हाँ ठीक हूँ।
तो आई क्यों नहीं?
कहा तो था तुमसे कि मैं नहीं आ पाऊंगी।
कल रात भी आई थी तो बाबा ने बहुत डांटा था।
ठीक है, फिर मैं वहाँ आती हूँ। हेलो हेलो शबनम।
देखो मैं अम्मी लोगों के साथ फूफी के घर जा रही हूँ।
कब तक रहोगी?
नहीं पता, अब जब तक रहेंगे हम तुमको फोन करके इतला देते रहेंगे।
ठीक है, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
इतनी गुस्ताख हो गई कि बहार को बुरा भला कहने लगी।
बहार नाराज हो गई?
गिर गई मेरी बच्ची, खुदा ने रहम किया। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके शौहर का क्या जवाब देते?
सब अब्बू का कसूर है।
हाँ तुम भी यही कहो, आखिर में माँ बाप का कसूर होता है। अगर करो तो बुरे हो, अगर ना करो तब भी बुरे हो।
अम्मी जान, पिता ने जो भी मांगा है अब्बू ने उसके लिए फराहम किया है।
अरे इसके लिए भी तो करते थे,
ऐसी हरकतें थोड़ी की इसने हमारे साथ।
बाहर किसी और नस्ल के, अब जमाना बदल गया है।
अरे छोड़ो भी, किसी और नस्ल की है भला, इन दोनों की उम्र में कितना फर्क है। तुम लोगों की नज़र में हर 8 साल के बाद नस्ल बदल जाती है, ज़रूर तमाम चीज़ों को भी इसके साथ बदल जाना चाहिए। इन्हीं बहानों से जो दिल में आता है वही करते हो तुम लोग। तुम्हारे अबू बेचारे क्या करे, दिन रात एक कर दिया है, सुबह से शाम तक काम करते रहते वो भी इस उम्र में, ताकि मोहतरमा जाके हर रोज अपने ऊपर एक तजुर्बा करे।
मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, उसको पैसे ही मत दे।
हाँ सच कह रही हूँ, ये उस लायक नहीं है, वरना जिसको भी सुकून और पैसे दिया जाता है वो जाके ऐसे नए ड्रामे नहीं करता है अपने साथ। ऐसे बच्चों को सख्ती में रखना चाहिए ताकि उन्हें खुशी की कद्र हो। जब दफ्तरों में धक्के खाएंगे और चंद तुमान के लिए लोगों के हर हजार बातें सुनाएंगे और हर ऐरे गारे के सामने जी सर कहेंगे, तब उनमें समझ में आएगा कि दुनिया कैसी है।
अरे मुझसे कहा होता मैं कहलवा देता कि रकम की तफसीलात निकाल के दिखा दे। एक मिनट होल्ड करो, नैयरी साहब से कहो कि यहाँ आए।
जी सर।
हाँ हाँ मैं दकीक तौर पर बता सकता हूँ, मुझे डिटेल देखने दे।
फरमाइए। सलाम, कैसे हैं आप? जी हैं, होल्ड कीजिए। माफ़ कीजिएगा शाइस्ता मैडम लाइन पे हैं। नयरी साहब, फानी साहब को आपसे काम है। जी नहीं, ऊपर तशरीफ ले आइए जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
ओहो ये दिया था जलाने को।
अच्छा ठीक है, ला चुके, अब उठ के जाओ वरना कोई देख लेगा तुमको।
तो देख ले, मैंने कोई जुर्म किया है क्या? ना उसका मुलाजिम हूँ ना मकरूज, अपनी मेहनत का खाता हूँ, किसी का एहसान नहीं लेता।
ठीक है तुम सच कहते हो, अब जाओ ना।
अरे चोर उसके दिल में है, मैं क्यों उससे डरूं?
जाओ असलान साहब जाओ, तुम्हें क्या पता क्यों बदगुमानी फैला रहे हो, अपनी तरफ से बातें मत बनाओ। अभी तुम्हें पता लग जाएगा कि उन्होंने कहीं भेजा है तो फिर बगेड़ा खड़ा हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी।
तुम्हें इन बातों से धोखा दे सकता है, लेकिन मैं खुद चोरों का चोर हूँ। इस औरत के घर में ऐसा फैला हुआ था, एक दूसरे पर मरे जा रहे थे। किसी तरह से उसे समझाओ कि तुम इसका राज जान चुके हो, उसके बाद तुम्हें डांट डपट नहीं खिला सकेगा, नौकरी भी मजबूत हो जाएगी।
अच्छा ठीक है जाओ, प्लीज जाओ।
काम पर जाते हैं तो एक मुसीबत, नहीं जाते हैं तो दूसरी मुसीबत। समझ में नहीं आ रहा है कि औरतों का क्या इलाज किया जाए।
क्या है, क्या कर रहे हो?
तुम्हारे पास 10-20 हजार तुमान होंगे, तनख्वाह लेके वापस कर दूंगा। डरने क्या बात है भाई, हम भी तो इंसान हैं, ऐसी क्या बात है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी बहन ने फोन किया था कि ताहिरा साहिबा के लिए कुछ खरीदने का ऑर्डर दिया है।
जाओ,
कोई और काम है?
जाओ जाओ जाओ।
देखो अपना ख्याल रखना।
जलनी साहिबा, नहरी का क्या हुआ?
उनको फोन किया, ऊपर आ जाएंगे।
मैडम जलीली, मैडम जलीली,
माफ कीजिएगा।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाइए।
हेलो, खैरी मैडम, सलाम जी, ले आया। जानती हूँ कि एक बीरअप दरख्वास्त है, लेकिन प्लीज़ इसको इसके बाद से यहाँ मत भेजिएगा। अरे आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेता, यहीं बैठ जाता है, फानी साहब देख लेंगे तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। जानती हूँ आपने बहुत मेहरबानी की उसको रख लिया, जानती हूँ, कसम से जानती हूँ। लेकिन मुमकिन हो तो प्लीज़ यहाँ के काम किसी और को दे दिया करें। जब भी उसके अलावा कोई ना हो तो मुझे फ़ोन कर लिया करें, मैं खुद आके ले लिया करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप तो हिम्मत भी नहीं होती आपको किसी और काम के लिए फ़ोन करूँ। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आइए।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम।
जनाब कादरी साहब, मैडम बुजुर्ग मेहर, प्लीज तशरीफ रखिए प्लीज। आप ठीक है मैडम? क्या खैर खबर?
बहुत बहुत शुक्रिया।
कागजात ले आइए आप।
जी ये ले।
आपके आने से पहले कादरी साहब से डिस्काउंट पर बहस कर रहा था, कहा कि मैंने 5 मिलियन तुमान की रियायत लेने का वादा किया है, आखिरकार उन्होंने भी हम पर एहसान किया और मान गए बिलाखिर।
अरे सूफी साहब क्या बात कर रहे हैं, गाड़ी आप ही किए भाई।
बहुत शुक्रिया आपका। रकम का आपने कोडेड चेक बनवाया है ना?
जी हाँ, ये लीजिए।
बहुत मेहरबानी, ये लीजिए जनाब।
बहुत बहुत शुक्रिया।
आप मेहरबानी करके इसके नीचे एक दस्तखत कर दें।
जी।
गाड़ी में बैठी, अच्छी लगी आपको?
जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये लीजिए, ये आपकी खिदमत में। मुबारक हो मैडम।
थैंक यू।
अब आपकी बारी।
ये ले।
वाह वाह, कितने प्यारे दस्तखत हैं।
अच्छा तो फिर मेरा यहाँ कोई काम नहीं है?
नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम पैसे में बड़ी अच्छी गाड़ी हाथ लगी। अच्छा सब दिन तुम आपके लिए जाएगा कहलवाता हूँ।
नहीं शुक्रिया, घर में इंतजार हो रहा है, चलती हूँ।
खुदा हाफिज़ मैडम, मुबारक हो।
बहुत शुक्रिया।
मैं हूँ यहाँ पर।
मैडम बुजुर्ग मेहर, कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी आपकी है, लगता है आपको हम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। अलबत्ता दिल को दिल से राह होती है।
बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्यूमेंट तैयार करके दफ्तर भिजवा दूंगा, जब काम हो जाएगा तो आपको बुलवा लूंगा, रजिस्ट्रार ऑफिस जाके दस्तखत कर लेंगे।
बहुत खूब शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
इनायत है आपकी,
आप जाए प्लीज।
बहुत शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम।
अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम, आइए।
डिस्टर्ब तो नहीं किया?
कोई बात नहीं, तशरीफ लाइए।
माफ कीजिएगा।
आइए तशरीफ लाइए।
जी आप तशरीफ लाइए।
अस्सलामुअलैकुम बेटा।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप?
खुश आमदीद स्माइल बेटा।
शुक्रिया बहुत बहुत, माफ कीजिएगा।
ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है।
माफ कीजिएगा, संभाला नहीं है।
क्यों नहीं, ऊपर है, मैं अभी बैठू, बुलाती हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया।
अरे यहाँ क्यों खड़ी हो?
इस्माइल है।
हाँ,
यहाँ किस लिए आया है?
अरे क्या मतलब, तुमसे मिलना है?
ऐसे ही, मैं नहीं मिलना चाहती।
फिर क्या हुआ समाना?
तंग नहीं करे अम्मी जान, खुदा के लिए कहा ना कि मैं नहीं मिलना चाहती। मेरा पूछा तो कहें कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, यहाँ पर कहें कि सो रही है।
बुरी बात है बेटा, लड़के को इतना तंग ना किया करो, बेचारा है।
बेचारा है? अरे बेचारी तो मैं हूँ।
कुछ नहीं बचता था, काम ज्यादा था, तनख्वाह कम देता था। मैंने सोचा कि इस तरह से तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। खुदा उम्र दे उस्ताद असकर को, उनको तो अपने मुलाजिमीन की बिल्कुल ही कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपने मुनाफे की सोचते हैं।
लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ असगर साहब खुदातर्स इंसान है, कैसे हो सकता है कि अपने मुलाजिम की परवाह ना करें?
अरे काजिम साहब ये सब दिखावा है,
अच्छा कहीं और काम ढूंढ सके हो?
नहीं, असल में मैं चाहता हूँ कि अगर मुमकिन हो तो अपना काम शुरू करूँ।
यानी अपनी दुकान खोलना चाहते हो?
जी हाँ, अगर हो सके। अलबत्ता पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि दुकान का किराया भी देना पड़ेगा और सामान वगैरह भी खरीदना होगा, बहुत कुछ करना होगा। लेकिन चलो खुदा पर तवक्कुल करके देखते हैं क्या होता है।
खुश आमदे इस्माइल बेटा।
बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।
तुम्हारे लिए चाय लाए?
आप तकलीफ ना करें।
अरे नहीं, कैसे तकलीफ।
बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान।
डॉक्टर के विजिट कैसे जा रहे हैं?
असल में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था ताकि उसी मौजू पर बात करूं।
बोलो बेटा।
अगर मुमकिन हो तो समाना को भी बुलाएं। मैं नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता उसके दिल में कोई बात रह जाए और मुझसे नाराज हो जाए। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, बेहतर है वो भी मौजूद हो।
ये ले चाय।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ की।
अरे ये तो कुछ नहीं है।
तो समाना को बुलाइए।
जी अभी बुलाती हूँ।
लीजिए।
आप लीजिए।
आओ बेटा, इस्माइल को तुमसे काम है।
मैंने आपसे कहा ना अम्मी, मुझे उनसे कोई काम नहीं है।
तुम्हारे अब्बू ने बुलाने को कहा है बेटा। जिद नहीं करो, कहा है कोई जरूरी बात करनी जिसमें तुम्हारा होना जरूरी है। मैं भी नीचे नहीं आऊंगी, तुम आसानी से बात कर लो।
वालेकुम सलाम।
आओ बैठो बेटा। इस्माइल को कुछ बात करनी है तुमसे, चाहता है कि तुम भी सुनो। कहो इस्माइल मियां।
असल में जब मैं पिछली दफ़ा आपकी खिदमत में आया था तो आपने मुझसे लड़ाई की कि उस लड़की यानी समाना की सहेली का मोबाइल क्यों तोड़ा। मैं अब उस लड़की के बारे में कुछ कहने आया हूँ ताकि आप उसके लिए साबित हो कि मैंने पिछले दफ़ा उसका मोबाइल तोड़ा अच्छा किया था।
माफ़ कीजिएगा इस्माइल मियां, कहते हैं कि झूठे इंसान का हाफिज़ा बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होता है। तुमने उस दफ़ा कहा था कि उसका मोबाइल नहीं तोड़ा बल्कि तुम्हारा हाथ लगा और गिर गया ज़मीन पर।
जी जी, अच्छा अच्छा, अब जो भी। बहरहाल उसके बाद समाना मुझे मजबूर किया कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। मैं अब इसलिए आया हूं कि आप पर साबित करूं कि पिछली दफ़ा मैं हक बजानिब था, यानी मेरे पास काम की वजह थी।
हमारा इख्तलाफ सिर्फ महरनोश के बारे में नहीं है।
क्यों नहीं, इत्तेफाक से असल मसला यही लड़की है। काजिम साहब, मैं पिछली दफ़ा उस लड़की का मोबाइल तोड़ने में हक बजानिब था और अब भी ये हक रखता हूँ कि समाना को महरनोश के साथ आने जाने से मना करूँ। ये लड़की फासिद है।
ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि तुम दूसरों की गीबत करो इस्माइल मियां।
इत्तेफाक से बिल्कुल ठीक है काजिम साहब, बहुत ठीक है। मैंने कुछ अरसे से उस लड़की पर नज़र रखी हुई है। कहने दो ना, ये अपने बॉस के साथ जो एक उम्र रसीदा और बाल बच्चेदार इंसान है, हाथ में हाथ देकर उसकी गाड़ी में सवार हुई और कहाँ गई, कहाँ गई? रेस्टोरेंट।
मैं इनकी बातों का यकीन नहीं करती अब्बू जान।
ये है मेरा असल दुख, ये है मेरा असल दुख। ये सब बातों को मानती है सिवाय अपने शौहर की बातों के।
इस्माइल मियां, ये बात जो तुम कह रहे हो बहुत संगीन इल्जाम है।
हाँ बहुत संगीन है, बहुत संगीन है। लेकिन समाना साहिबा बजाय इसके कि मेरी बात यानी अपने शौहर की बात मानकर उस लड़की के साथ कतई ताल्लुक करे, उल्टा मुझे कह रही है कि तुम्हें दूसरों को ताकुब करने का कोई हक नहीं है। ये कोई बात हुई?
हाँ अभी यही कह रही हूँ, तुम्हें दूसरों की जिंदगी में झांकना करने का कोई हक नहीं है। माफ कीजिएगा अब्बू जान।
हम हक बात भी करते हैं तो उल्टा जवाब देती है। देखिए कासिम साहब, मुझे इसके इस अमल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुदा गवाह है मुझे समाना से बहुत प्यार है, अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। लेकिन وہ لڑکی بہت بد چلانے بد کردار ہے, بہت زیادہ بد کردار.
بس کرو اسماعیل میاں, اتنی غیبت نہ کرو.
کیسی غیبت قاسم صاحب, کون سی غیبت؟ معاف کیجیے گا, معذرت کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسا ہوا ہے. آپ میری بات کا یقین نہیں کرتے تو ابھی تیار ہو کر چلتے ہیں ریسٹورینٹ میں جہاں وہ یہ لوگ جاتے تھے. میں آپ کے لیے ثابت کر دوں گا جھوٹ نہیں بول رہا ہوں.
اگر جھوٹ بول رہے ہو تو یہ خدا نخواستہ تہمت ہے, اگر سچ بول رہے ہو تو یہ غیبت کر رہے ہو. اگر خود کو مسلمان کہتے ہو تو یہ قصہ ختم کر دو.
میں مسلمان ہوں البتہ, اس طرح نہیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں, اس طرح نہیں جو سوانہ کو پسند ہے. مسلمان ہوں لیکن جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں وہی کرتا ہوں.
یہ کہ ہم غلط مسلمان ہیں یا صحیح مسلمان ہیں خدا جانتا ہے. اللہ نے خود فرمایا ہے اگر کوئی مسلمان غلطی کرے میں اپنی مہربانی سے اس کو چھپاتا ہوں, اور کسی کو اشکار کرنے کا حق نہیں ہے.
یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں آرام سے بیٹھا رہوں یا لڑکی میری بیوی کو گمراہ کرے کیونکہ خدا نے کہا کہ غیبت نہیں کرو؟ ارے کاظم صاحب چھوڑ بھی دیں آپ.
دھیرے دھیرے بولو.
جی معاف کیجیے گا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, فرمائیے.
خدا کا حکم جو بھی ہوگا ہم اس کو مانتے ہیں. خدا نے کبھی نہیں فرمایا ہے کہ ہم کسی کو فجور کے سامنے خاموش بیٹھے. جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کے بارے میں سمانہ کافی حد تک خبردار کر چکے ہیں, اب تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں اگر سمانہ کو یقین ہو گیا جو باتیں اس نے تم سے کہی ہیں اس سہیلی کے بارے میں, تو سچ ہے کہ اسے قطع تعلق کر لے گی اور اسے کرنا بھی ہوگا.
میں بھی صرف یہی چاہتا ہوں.
لیکن اس بات کا تمہاری اخلاقی کمزوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مسئلہ ابھی تک اپنی جگہ پر باقی ہے.
میری اخلاقی کمزوری؟
ہاں, تم نے اس دفعہ بھی کہا تھا کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو خود پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہو, جیسے بالکل ابھی تم نے کیا. یہ بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے.
ارے کاظم صاحب, جب سمانہ میری بات مانتی ہے تو مجھے بالکل غصہ نہیں آتا ہے.
جی ہاں, جب سب کچھ انسان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو غصہ نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. صحیح انسان وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو کر لے. سمجھے اسماعیل صاحب؟
جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اس کے بعد میں غصہ نہ ہونے یا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کروں گا.
میں نے سمانہ سے بھی کہہ دیا ہے کہ تم دونوں ڈاکٹر کے تمام وزٹ مکمل کر لو. اگر سائیکولوجسٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم دونوں مشترکہ زندگی آغاز کر سکتے ہو تو میں بھی اجازت دے دوں گا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام پاگل, کیسی ہو تم؟ کیسی ہو آج, ہماری کیسے یاد آ گئی؟
کیا حال چال ہے؟
ٹھیک ہو تم؟ کیسی ہو؟
اکیلی ہو؟
نہیں, روزبہ ہے, اکاؤنٹنگ کے افراد بھی ہیں. آؤ بیٹھو.
میڈم طاہری نہیں ہے؟
نہیں آج جلدی چلی گئی, میں بھی انجینئر کے لیے رکی ہوئی, کہیں میٹنگ میں گئے ہیں, واپس آئیں گے تو ان کو ایک لفافہ دینا ہے. تم کیسی ہو؟
کچھ نہیں, خیر خیریت.
اکیلی ہو یا ساتھ آیا ہے؟
اکیلی ہوں.
ناممکن, ابھی بتاتی ہوں.
کہاں جا رہی ہو؟
وہ تمہیں اکیلا چھوڑ ہی نہیں سکتا. آؤ. دیکھو ہمیشہ اس سبز گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, میں دیکھتی رہتی ہوں.
چھوڑو ان باتوں کو, آؤ, تم سے کام ہے.
نہیں ہے.
کیا خیر خبر, آج کل کیا کر رہی ہو؟
کوئی خبر نہیں ہے, بس اس شاندار اور آرام دہ آفس میں عیش کرتی ہوں.
کھانے میں کیا کھایا ہے؟
انجینئر یاسری صاحبہ, افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آج کام اور مشغلے کی وجہ سے میں کھانا نہیں کھا پائی, اس لیے میں نے سوچا کہ گھر جاؤں گی اور رات میں ہی کھانا کھاؤں گی.
اور کل کل کھانے میں کیا کھایا تھا؟
اچھا تمہیں پتہ چلا, کل انجینئر کے ساتھ ایک بہت شاندار ریسٹورانٹ گئے تھے. تم کس لیے پوچھ رہی ہو سمانہ؟
انجینئر کے ساتھ کیوں ریسٹورانٹ گئی تھی؟
تمہیں خبر دی جاتی ہے نا, طاہری صاحبہ یہاں میری جاسوسی کرتی ہیں.
میں نے تم سے پوچھا کہ آخر کیوں انجینئر کے ساتھ ریسٹورانٹ گئی تھیں.
کیونکہ مجھے اپنی بیٹی سے ملوانا چاہتے تھے.
اچھا, تو بیٹی بھی تھی؟
جی, ان کی بیٹی بھی تھی. کیا بات ہے, طاہر نے غلط اطلاع دی ہے کہ میں اور انجینئر دونوں اکیلے ہی ریسٹورانٹ گئے تھے؟
تمہاری قسم نہیں, میں نے طاہر صاحب کو دیکھا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ بات کروں میں.
تو سمانہ تم یہ کہاں سے جانتی ہو؟
پاگل, ابھی ابھی تم نے خود بتایا. یہ بتاؤ, یہ میڈم یاسمین کیسی لڑکی تھی؟ ارے کیا یہ آفس نہیں آتی کہ اسے ملنے تمہیں ریسٹورینٹ جانا پڑتا ہے؟ ہاں
نہیں, آفس نہیں آتی. کس لیے یہاں آئے؟
اس لیے کہ اس کے باپ کا آفس ہے.
باپ کا آفس ہے, इसका ये मतलब तो नहीं कि रोज यहाँ ऑफिस में आए।
अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। बिलावजा यहाँ क्यों रुकी हो, काम भी तो नहीं है, चलो।
मैं नहीं आ सकती, इंजीनियर के इंतजार कर रही हूँ, उनको एक पेपर देना है।
अच्छा तो लेटर उनकी मेज पर रख दो, डरो नहीं, नौकरी से नहीं निकालेंगे, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, तुम अच्छी मुलाजिम हो, उठो उठो।
खुदा हाफिज़।